نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن مواقع پہ توکل کی دعوت دی ہے اگر آپ کے پاس بک ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پیج نمبر بول دیتی ہوں تاکہ آپ وہاں سے دیکھیں لیکن آپ نوٹس میں اپنے طور پہ اس کا خلاصہ لکھیں گے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ اٹھانے کے حساب سے زیادہ بہتر ہوگا کہ کس طرح سے توکل کیا جائے گا اور کہاں کیا جائے گا تو اس میں پیج نمبر کھول لیجیے 113 سب سے پہلے عبادت کرتے وقت بھی اللہ پہ توکل کریں شیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ میں جو عبادت کرتی ہوں نا یہ قبول نہیں ہو رہی میں جو نیکی کر رہی ہوں یہ قبول نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت 123 میں فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اس کی عبادت کرو اور اس پہ بھروسہ کرو تو آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ جب کسی بھی عبادت کے کرنے کا موقع مل جائے نا پھر زیادہ نہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہے نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا وٹ ایور سورۃ الاحزاب آئے سیکنڈ اور تھرڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہہ دی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اب عبادت کے اندر توکل میں مثلا آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم حج پہ گئے تھے پھر وہاں پتہ نہیں غلطیاں ہو گئیں پھر ہمارا تو حج قبول نہیں ہوا آپ اس کے آگے لکھ لیجیے وہم کرنا اچھا عمرے میں حج پہ میرا بال ٹوٹ گیا تھا تو پھر میرا تو حج قبول ہی نہیں ہوا آپ اپنے معاملے میں بہتر سے بہتر کوشش کر لیں پھر اللہ پہ ڈال دیں کیونکہ شیطان بعض دفعہ ہماری عبادات کو اس لیے بھی خراب کرتا ہے کہ ہمیں ایسے سوالوں مل جاتا ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں فائدہ تو ہو نہیں رہا میری نمازوں کا اس سے فائدہ کیا ہوگا میں نہیں کرتی دعائیں قبول تو ہو نہیں رہی اب کیوں مانگوں نہیں عبادت کریں پھر جا کے اللہ پہ ڈال دیں پھر دوسری چیز ہے تبلیغ میں یہ آپ سب کے متعلق بات ہے دعوت اور تبلیغ کرتے وقت بھی اللہ ہی پہ توکل کریں نہ اپنے اسباب کو دیکھیں کہ بہت اچھی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا آج ارینجمنٹ بہت اچھے ہیں تو آج سارا کام سموتھ ہوگا نہیں کام کے لیے کوشش کریں ارادے کریں اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں سورۃ توبہ آیت 129 میں بھی یہی بات ہے اور اسی طرح سے اگر حضرت نوح کی مثال دیکھیں تو سورۃ یونس آیت 71 میں آتا ہے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اس کے باوجود قوم نے نہیں سنی جھٹلایا منہ پھیرا کانوں میں انگلیاں ڈالی سورۃ نوح کا ریفرنس لکھ لیں اس میں اگر آپ بعد میں پڑھنا چاہیں کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں لوگ میری بات سننا نہیں چاہتے لوگ درس میں آتے نہیں میرے گھر والے میرے معاون نہیں تو وہ پھر سورۃ نوح سے اپنے لیے عمل کی بات لے لے بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ درس و تدریس میں بھی لوگ بندوں پہ توکل کرنے لگتے ہیں اس کو تو کاٹ کے رکھ دیں جتنا زیادہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہوتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس بات کو کرنا سننا آسان کر دے گا اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ پہنچا دیجئے نتائج اللہ کے ذمہ ڈال دیجئے گا بعض لوگ کنوے کرنے سے زیادہ کنونس کرنے لگتے ہیں یہ جملہ ضرور لکھیے گا ہم نے کنوے کرنا ہے کنونس نہیں کرنا وجہ کیا ہوگی کنونس کرنے کے لیے پھر ہم شریعت کو بدل دیتے ہیں کہ آج تو منوا کے ہی جاؤں گی چاہے دین کو ہلکا کرنا پڑے ایسا نہ سوچئے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حکومت کرنے اور سلطنت کی جو ذمہ داریاں ملتی ہیں اس کو ادا کرنے والے قاضی کے لیے توکل کیا یعنی اچھے حکمران کیسے توکل کریں سورۃ شورا آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے اللہ ہی میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کیا اشارہ ہے کہ اگر حق پر ہے حاکم وقت تو صبر کرے توکل کرے امام احمد کی مثال آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہیں ایک مسئلے پیسے اڑے تھے کہ انہوں نے پھر کوڑے کھا لیے تھے لیکن حق کو نہیں چھوڑا آج کے دور میں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں اگر لوگوں کو ناراض کیا تو نہیں آئیں گے یاد رکھیے دین الگ چیز ہے سیاست الگ چیز ہے آپ اگر لوگوں کو خوش کرنے والا دین دیں گے تو اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا جو دینا ہے اس کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ دے کوئی مان لے تو مان لے نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے پھر اسی طرح سے دشمن سے جب مقابلہ ہو تو اس وقت توکل کرنا ہے سورہ آل عمران آیت 121 اور 122 میں غزوہ احد کی مثال ہے کیا وہ حالات تھے جب اللہ کے نبی میدان احد میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور جب تھوڑی سی غلطی ہوئی، صحابہ سے ایک بھول ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوور لک کر گئے، تو اللہ نے تھوڑی سی مشکل میں بھی ڈال دیا. تو پتہ کیا چلا کہ جب کبھی کسی محاذ پہ ہوں، دشمن سے ملیں، کسی غیر مسلم سے مل رہے ہیں، کوئی ایسے ادارے میں جا رہے ہیں، کسی سیکیورٹی سے گزر رہے ہیں، اللہ پہ توکل کریں. لوگ کہتے ہیں آپ نقاب اتار دیں گے تو آپ کو کوئی چیک نہیں کرے گا، آپ کی داڑھی ہے تو آپ کی چیک اپ بہت مشکل ہوگا، اور آپ مسلم لگتے ہیں تو جابس نہیں ملیں گی. نیور ڈو تھنک اباؤٹ دیٹ، اللہ پہ رکھیے. اور ہاں، اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں آپ کو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ چار لفظ آپ میرے ساتھ دہرائیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بندے کو دشمن کا خوف ہو. اب دشمن کا خوف کئی طرح کا ہوتا ہے نا، آج ہم کو میدان جنگ میں تو نہیں جاتے، لیکن زندگی کے میدان میں جہاں آپ کو لگے کہ لوگ آپ کے اسلام کی وجہ سے آپ کو ستا سکتے ہیں، یہ دعا پڑھ کے نکلے. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یہ دعائیں پڑھ کے جائیں، باہر پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نرمی ڈالے گا. پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 160 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہہ دی کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. سورت مائدہ آیت 11 میں بھی یہی بات ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا لیا تھا. پھر سورت توبہ آیت 25 میں غزوہ حنین کا ذکر ہے. اس دن مسلمانوں کو لگا کہ آج تو ہم بہت ہیں، بڑے زیادہ ہو گئے، آج ہمیں کون ہرائے گا، اسی دن ہی جھٹکا آ گیا. یاد رکھیے، اپنے اسباب پہ مان نہیں کرنا، اسباب جمع کرنے ہیں لیکن اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. پھر سورت مائدہ 22 اور 23 میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جہاد سے انکار کر کے موسیٰ کو تنہا چھوڑ دیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگ وہاں مددگار کے طور پہ ثابت کر دیے، کالب یوحنا اور یوشع بن نون، اور اللہ نے ان کو مبارک دی کہ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا. لہٰذا توکل بہت بڑی دولت ہے جو دشمن کے مقابلے میں انسان کو کھڑا رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے، امن کی حالت میں بھی آپ اللہ پہ توکل کریں، یعنی آپ کی میری زندگی میں سکون ہے، اب بھی بہت زیادہ سیلف سفیشینٹ نہ ہو جائیں، بولیں کہ اے اللہ، جو سکون ہے، جو خاموشی ہے، یہ بھی تیری طرف سے ہے، تو نے میرے لیے یہ ساری باتیں رکھی ہیں، تو میں اس پر مطمئن ہوں. کل بھی حالات بدل سکتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، نعمتوں کے زوال سے بچنے کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں. اور آج حالات کے ہیں، کل کیا ہو جائیں گے کس کو پتا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے توکل کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، بظاہر کڑی شرطیں مانی تھیں، لیکن اس کی خیر کتنی بڑی نکلی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اتنے زیادہ لوگ اسلام پہ آ گئے. پھر اسی طرح ایک دوسرے سے مشورہ کرتے وقت بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے اور اعتماد کرنا ہے. سورت آل عمران 159 سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اس میں انسان کو بہت ہی خوبصورت گائیڈ لائن ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ اجتماعیت کا طریقہ ہی کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو کسی کو جوڑتی ہیں. نمبر ایک، نرمی، لن تلہم. پھر کیا چیز ہے جو توڑ دیتی ہے لوگوں کو آپ سے، جس میں آپ کی سخت دلی، یعنی آپ لوگوں کے لیے نیگیٹو فیلنگز رکھتے ہیں، پھر آپ ان کے بارے میں بدگمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی ہو دل میں اور زبان بھی نرم ہو، یا دل میں رحمت ہو تو زبان پہ نرمی ہو. تو یہ بیسٹ گم ہے ٹیم کو جوڑنے کا. آپ کہہ لیجئے کہ لیڈر میں کیا خوبیاں آنی چاہیے جس سے ٹیم جڑتی ہے، وہ یہی ہیں. فاف انہم، ان سے غلطیاں تو معاف کر دیجئے، غلطیاں کرتے ہی وہ ہیں جو کام کریں، جو کام نہیں کرتے ان سے آپ کب ناراض ہوں گے. تو کیا پتہ چلا کہ جب کوئی غلطی کرے تو معاف کر دیں، بات دل میں رکھیں، پھر بات صاف کر دیں، پھر اس کو ایسے کر دیں جیسے تھی نہیں، بلکہ پھر ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں تو اس پہ ان کو معاف کر دیں، اور آئندہ بھی ان کو مشوروں میں شامل رکھیں. کیا پتہ چلا کہ غلطی کرنے کے بعد تمہارا موریل ڈاؤن نہ ہو جائے اور تم اس کام کو کرو. اگر آج مسلم لیڈرز میں یہ خوبیاں آ جائیں نا، تو یقین کریں یہ بکھری ہوئی امت دوبارہ جڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح رزق طلب کرنے میں، یہ ہے سب سے مشہور چیز جو توکل کے باب میں ہم سمجھ سکتے ہیں، رزق کا معاملہ. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. پہلے آیات دیکھ لیجئے. سورۃ طلاق کی آیت 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کو کافی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رزق کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس نے آج ہمیں بے چین کیا ہوا. मैं इस पे कोई दुखती रग नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन उम्मते मुस्लिमा का इस वक्त मसला एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, आप सोचिए जरा, आप अपने ऊपर लेकर या अपने हालात के मुताबिक दूसरे लोग जिनको आप जानती हैं इस वक्त अमूमन लोगों के क्या मसले हैं। जॉब का मसला, रिस्क आ गया उसमें, राइट? कारोबार नहीं चल रहा, इकोनॉमी डूब रही है, रिस्क है। डॉलर रेट ऊपर नीचे हो गया, क्रोन ऊपर नीचे हो गया, रिस्क है। घरेलू मसले, बीवी कहीं है तो शौहर कहीं है, क्या मसला भाई, प्रॉब्लम क्या है भाई? आप चले जाइए, बीवी नहीं आ सकती, आप चले जाइए। ये कहकर कोई आते ना बाहर के मुल्कों में कि यहां जाएंगे तो रिस्क बढ़ेगा, वल्लाह ये तवक्कुल के खिलाफ है। आप में से, मेरे में से जो इस मुल्क में रिस्क माने की नीयत से आया वो वापस चला जाए, उसका रिस्क उसके साथ वापस जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने यही बता दिया, हदीस पर सुन लीजिए। हजरत जाबिर कहते हैं कोई शख्स उस वक्त तक मौत की नींद नहीं सो सकता जब तक इसका रिस्क इसको पहुंच ना जाए, अगरचे देर सवेर ही हो इसको इसका रिस्क मिलकर रहेगा। बस अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से मांगने में सलीका मंदी का अंदाज इख्तियार करो, फिर अल्लाह ने जिस चीज को हलाल करार दिए इसे ले लो, और जिसको उसने हराम और नापाक करार दिए इसको छोड़ दो। इब्ने माजा की रिवायत है और सही रिवायत है। तो क्या पता चला कि रिस्क के लिए जो बैठे ना वो तो बेवकूफ़ी करेंगे। उनको अगर यकीन हो जाए कि ये रिस्क वहीं जाएगा, हदीस में आता है कि जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है ना, ऐसे उसका रिस्क ढूंढता है। फिर आप देखिए कि इससे कितने घरेलू इश्यूज शुरू हो जाते हैं। क्या आप ऐसे माहौल में नहीं रहते कि जहाँ कितनी औरतें अपने शौहरों के बगैर रह रही हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं किस बात का कि उनके शौहर उधर आ जाएं, या कई मर्द अपनी बीवियों को बुलाने के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो चले जाओ, बुला सकते हो तो बुला लो, नहीं तो चले जाओ। ये जो ख्याल है ना कि बाहर के मुल्कों में रहेंगे तो रिस्क होगा, दौलत होगी, माल होगा, ये हमारे ईमान की कमी है। मैंने जब भी जाकर अपने मुल्कों में देखा, शायद मैं फिर जाती ऐसी जगहों पे हूँ जहाँ लोगों को पता ही ना हो, मैंने तो लोगों को यहाँ से ज्यादा खुशहाल देखा। उनके घर हमारे घर के, आप जिसको विला कहते हैं वो विला थोड़ी है, वो तो पाकिस्तान में पीछे सामान स्टोर करने वाले घर की तरह ढारस है। अंदर आप जो मर्जी पत्थर लगा ले, माजरत के साथ है, ये विले विले नहीं है, ये बस ऐसे ही लकड़ी के घर है। कीमतों में तो वो वाकई विलों से भी बड़े होंगे, लेकिन अगर आपने खूबसूरत घर देखने तो अपने मुल्कों के देख लें। मासियां देखिए, आपके इस मुल्क में तो मैंने कभी मेड का नाम भी नहीं सुना, इल्ला माशाल्लाह कभी साइड पे देखा हो तो मासियां खुद ही बनते हैं ना, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, खाने भी पकते हैं। अगर आपको लगता है इन चीजों में कि ये मसला है, तो फिर आप इसको एक खास हद तक सॉर्ट आउट कीजिए। ना तो रहना मना है, ना जाना मना है, ना वो सवाब है, ना वो सवाब है। लेकिन ये जो गैर फितरी जंगे हैं ना, 5-5 साल से लड़कियां अलग हैं, 4 से अलग हैं, शादी हुई, लड़का उधर उधर, एक हफ्ता वो रही तो वो आ गया, वो गई, सारे सारे सोशल सेटअप की बुनियाद में ये पानी पड़ चुका है इस वक्त। अगर आप इस पे आवाज खड़ी कर सके तो यह आप किस मुल्क का मसला, इस इश्यू को हल कीजिए। यह आप जैसे पढ़े लिखे कुरान के साथ जुड़े हुए लोगों ने करना है। कह दीजिए कि अल्लाह ने जहां रिस्क देना चले जाते हैं, और यकीन करें कि होना वही है जो वमा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह। लेकिन ये आप सजा देते हैं गैर फितरी, बच्चे माँ बाप से अलग, बच्चे बीवियां से, बीवियां से अलग, फिर बच्चों का बाहर भेज देते हैं। 10 इश्यूज तो आप सिर्फ अपने इस शहर, अपने इस मुल्क के जमा कर सकते हैं, तो रिस्क के लिए तो कोई कहीं ना है। और जो मैं कहती हूँ, इन मुल्कों में झूठे वीजे लगवा के आते हैं कि यहाँ जॉब्स करेंगे, कमाएंगे, मैंने अभी कभी उनको सुरखरू नहीं देखा। वो 4 साल बाद भी पूछे तो वो रो ही रहे होते हैं कि हालात अभी भी ठीक नहीं है। एक रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उसका जिक्र आगे आ रहा है, और वो अल्लाह के रास्ते की हिजरत है। अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए अल्लाह के बंदों को फायदा दे रहे हैं, पूरी दुनिया में जाएं घूमे रहें, तरतीब सामने रखते हुए इसलिए मैं बदलना नहीं चाह रही। अगली चीज आपके सामने लिखी हुई, वादे पूरे करने में अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। अहदो पैमान है, कौल और इकरार है। जब किसी को कोई बात कह दे, अब आप बाद में कहते हैं हाय पता नहीं कैसे होगा, मैं इसको आपके लिए आसान कर देती हूँ, कमिटमेंट करते हुए डरो नहीं। लोग पूरा बैठ के मीटिंग में कमिटमेंट करेंगे, ये वो लिखें, ठीक है फाइन सब है, ठीक है हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में घंटे बाद आके कहीं नहीं लगता ये कर नहीं सकेंगे। आपने कोर्स की कमिटमेंट की है ना, कीजिए बिस्मिल्लाह, हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई पुलिस का केस थोड़ी बन जाएगा, नहीं तो ना से नियत तो करें। तो जब भी आपको कोई नेकी का काम हो, वॉलंटियर करने के, आपसे कोई खिदमत ली जा रही है, आपका बिजी स्केड्यूल है, हमारे साथ दिन रात ये स्केड्यूल चलते हैं, सुबह शाम ऑनलाइन ऑन साइट। सिर्फ आज के दिन में 3 नई क्लासेस शुरू हो रही है और अभी आपके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी रूम में जाएंगे जहाँ आज हमारा फर्स्ट रमजान के बाद यूके का नया कोर्स शुरू हुआ है। अभी उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब यहाँ 4 शायद बजेंगे तो अटलांटा में आज हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है। ये सारे वॉलंटियर्स कहाँ से आते हैं? वही लोग जो पहले 4 जगह काम करते हैं, कहते हैं चलो पांचवा भी कर लेंगे। और वो गवाही देते हैं कि जितना हम अल्लाह के रास्ते में काम ज्यादा लेते हैं हमारी मदद होती है, उतना ही बरकत है। तो कोई कमिटमेंट जिससे आपको लगे कि ये काम होगा कर सकते हैं नहीं, वो अल्लाह पे रखे। मैं इस पे आपको अपनी मिसाल देती हूँ, कहीं भी कोई ट्रिप बनता है ना, 2 से 3 महीने पहले शुरू हो जाते हैं मामले। जाहिर है ओवरसीज होते हैं, टिकट्स की अवेलेबिलिटी है, फिर वहां मस्जिदों से पूछना। मेरा दिल यूं कर रहा होता है थक थक थक। और मेरे पूरे ट्रिप का सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल डे कौन सा होता है? जो आखिरी दिन होता है। अभी भी मैं इस ट्रॉमे से गुजरी हूँ, पिछले हफ्ते ही हम इधर वापस आए हैं, तो जब कैलिफोर्निया से जहाज में बैठना था या जो वो सफर था, तो मुझे वो दिन याद आ रहा था ओस्लो से मैं फ्लोरिडा गई थी। आपको सुनाया था मैंने जिस दिन आई थी कि सिर्फ इन 2 महीनों में मैंने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने मुझे, यानी एक स्टेट में 2 दफा गई हूँ, तो 12 सूबे, जिसमें फिर आगे हर एक में 4-5 शहर तो होते ही हैं, इसमें से सिर्फ यूएसए में गुजरने का मौका दिया। उससे पहले फ्रांस का ट्रिप था, उससे पहले जर्मनी का ट्रिप था, उससे पहले आपके पास आई, उससे पहले यूके में थी, यूके से पहले उमरे पे थी, उमरे से पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से पहले फिर उमरे पे थे, फिर उससे पहले पूछे अगर मैं देखूँ तो इस पूरे साल में शायद 100 दफा तो जहाज में बैठे ही होंगे ना। जिस वक्त लोग ये कमिटमेंट्स लेते हैं ना, अंदर से मेरा दिल डरता है। मैं कहती हूँ अगर एक जगह जहाज को कुछ हो गया, अगले सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। हम जब फ्लाइट पे मिस होने का खतरा होता है, मैं ये डर नहीं होता ये फ्लाइट मिस होगी, ये मिस हुई तो अगले सारे प्रोग्राम मिस हो जाएंगे। और अक्सर जिन दूसरे शहरों में जाते हैं तो 2 दिनों में 3-4 दर्स होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ बस आने से लेके 3-4 घंटे बाद दर्स रख लें। फ्लाइट लेट हो तो डर है, लेकिन फिर जिस दिन वापसी होती तो मेरा जो दिल रोता है कि अल्लाह हम गुनाहगार बंदे तेरे पे नजरें लगा के कमिट करते हैं, तो हमसे बदले लेना, कहना करके दिखाओ, देखता हूँ करती हो कि नहीं। वही दिन पे दर्स हो जाते हैं, वही जगह जो प्लान किया होता है 100% अल्लाह वो काम करा देता है। 19-20 भी नहीं मैंने कुछ चेंजेस अल्लाह के हुक्म से देखी कभी ट्रिप में। ये किस पे आस पे होता है? अल्लाह के आस पे होता है। डर लगता है इतना इंसान थका होता है। आखिरी सफर की बता रही हूँ कि तकरीबन हमारे घर से निकलकर इधर आने के बीच में 20 घंटे से ज्यादा हम लोग सिर्फ ट्रेवलिंग और इस पे थे ना, तो भी मैं कैलिफोर्निया में बोर्डिंग पास लेके बैठी तो मेरे सामने एक मैसेज आ गया। फारिग थी तो मैंने कहा देखू, तो वो मुझे किसी दूसरे मुल्क की इन्विटेशन थी कि आपका ट्रिप यहाँ का रख ले। तो मैंने कहा प्लीज अभी इस वक्त मेरे से ये बात ना करें। यानी मैं ये बताने लगी आपको कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पे ये सब काम होते हैं, तो कभी ना डरें। मेरी आपकी औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें, अल्लाह पे तवक्कुल करें। कर सकती हूँ, थोड़ी सी गुंजाइशें खड़े हो जाएं, अल्लाह ज्यादा बना देगा। जिंदगी को जाया ना करें, सिर्फ आप लोगों को बात समझा दें, उनको समझ आती है तो डोंट वरी। आप सबको भी कहूंगी, नए कोर्स की आप कमिटमेंट कर रहे हैं, आप कोई वॉलंटियर की कमिटमेंट करें, ये आपने नहीं करना, ये अल्लाह करवाएगा आपसे। हाँ आप नखरे करेंगे और आप थोड़ा पीछे होंगे तो फिर अल्लाह आपको पीछे भी डाल देगा। तो यहाँ ये मतलब है कि कमिटमेंट करते वक्त ज्यादा ना सोचें, हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो अल्लाह की बात है। और इसमें आप देखिए सूरह यूसुफ की मिसाल है, आयत 66 और 67 में, कि हजरत याकूब ने अपने बेटों को जो कहा था कि तुम एक दरवाजे से ना जाना, तो अल्लाह ताला ही के हुक्म से फिर भी वो काम हो गया जो होना था। फिर नवी चीज जिस पे तवक्कुल आपको मुझे करना है, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करते हुए। ये बहुत मुश्किल लगता है, साल हर साल लगा देते हैं लोग सोचते हुए कि अब हम छोड़ जाते हैं इन मुल्कों को, अब ये है वो है। एक माँ का जुमला याद आ गया, सिस्टर ने खुद ही बताया कि मैंने अपने मियाँ से कहा अल्लाह के बंदे अभी भी चले चलो, और 1-2 साल छोड़े ना तो सिर्फ अकेले हम दोनों ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी बड़ा बच्चा या बच्ची कहती है मैंने नहीं जाना, आप जाते हैं तो जाएं। तो अभी ये जो 1-2 छोटे हैं उनको लेके चलते हैं अपने मुल्कों में, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ नहीं जाना। अगर आपको लग रहा है कि आप माहौल के असर में आ रहे हैं और आपके पास कोई प्रिवेंटेशन नहीं, तो फिर चले जाइए, फिर अल्लाह पर डाल दें। हिजरत का लफ्ज और जुदाई और अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ना, ये भी एक बड़ा मेरे लिए वो मुश्किल मरहला होता है। जब कहीं एक जगह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वक्ती तौर पर रहने मिलने, दिल लगता है, मोहब्बत हो जाती है, जहां रहते हैं यूज्ड होते हैं तो जाना होता है। जिस दिन किसी जगह से जाना होता है, मेरा पैकिंग करने को दिल नहीं करता। फिर मैं कहती अल्लाह आई भी तेरे लिए थी, जाना भी तेरे लिए। अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो कहीं और कहाँ जाएंगे। एक छोटे हैंड कैरी के साथ आप 2-3 महीने गुजार दें, आपको आज पैक करना है, अभी पूरा खोला भी नहीं होता, दोबारा बंद करना पड़ता है, तो वो फिर घर वाले भी और खुद ही भी, मुझे भी महसूस होता है। फिर मैं कहती हूँ अगर हम दिल लगा के बैठ गए, मोहब्बतें जमा करेंगे, तो फिर दीन का काम कैसे होगा। और यही कुर्बानी हमारे नबी ने दी थी। हिजरत की रातें आप याद कर लीजिए, यहाँ आप देखिए सूरत नहल आयत 41 और 42 में अल्लाह ने खुशखबरी दी कि जो लोग अल्लाह की खातिर अपने वतन छोड़ते हैं, इसके बाद कि इन पे जुल्म हुए, हम इनको जरूर दुनिया में अच्छे ठिकाने भी देंगे और यकीनन आखिरत का अजर सबसे बड़ा है। यानी हिजरत के नतीजे में ही कामयाबियां होती हैं। बासवा पैसों में कीमत नहीं चलती, कुर्बानियों में चलती है, हिजरत में चलती है। आप कहते हैं आपके पास कितने पैसे हैं ताकि हम फलां चीज खरीद रहे हैं, अल्लाह कहते हैं पैसे नहीं, वो आपकी हिजरत कबूल, चलो फरिश्तों उसको डाल दो उस क्रेडिट में, चलो वो आपकी कुर्बानी कबूल डाल दो, बाकी थोड़ी कमी पैसों से पूरी करके दे दो। जैसे आप देखिए कोई चीज किसी से देनी है ना, तो पैसे जब नहीं पूरे होते तो कहते हैं अच्छा जेवर दे दो, चलो इसको ये भी इसके नाम डाल दो, कर दो, लोग करते ना, ये जमीन का टुकड़ा दे दो, ट्रेडिंग करो। अल्लाह आपसे ट्रेड करता है, आपको पता, जितनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए आप देंगे उतनी बड़ी मदद, जितनी मुश्किल हिजरत होगी उतनी आसानियां होंगी। और अल्लाह के नबी की वो हिजरत तो सूरत तौबा आयत 40 है, ये तो इतनी इमोशनल करने लिए आते हैं, इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह, अगर तुम इसकी मदद ना करोगे तो ना करो, बेशक अल्लाह तो कर चुका उसकी मदद। जब लोगों ने उसको निकाल दिया और हजरत अबू बकर साथ थे, आयतें आप खुद पढ़िएगा बाद में, बेशुमार दफा इन पे तफसीर पे बात हुई, लेकिन अल्लाह के नबी कभी हिजरत ना करते अगर तवक्कुल ना होता। कौन सी आगे फैक्ट्रियां लगी हुई थी मदीना में आपकी और सहाबा की, कौन सा आपका वहां सेटअप था, लोग कहते जरा देख आए, जरा काम शुरू कर लें, फैक्ट्री सेट हो जाए, कारोबार हो जाए, फिर ले जाएंगे। करना है तो बेसोचे करें, मुझे तो ऐसे लगता है अल्लाह के काम बेसोचे ही करें तो होते हैं, सोची प्याते बंदा गया, ज्यादा ना सोचे, अपने हिस्से का काम करें, बाकी छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कि 10वां मौका जिस पे हम अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे वो क्या है, कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, तिजारत है, और शादी ब्याह, शादी ब्याह का तवक्कुल जिसपे हम बात कर चुके हैं। हजरत शुएब और हजरत मूसा की मिसाल सूरह कसस आयत 27 से 28 में है कि हजरत मूसा का जब रिश्ता आया था शुएब की बेटी पे, जरा अपने ऊपर लेकर सोचिए, अगर आप बेटी की माँ, आपकी बेटी है, ऐसे लड़के का रिश्ता आता है, नंबर एक डिपोर्टेड, डिपोर्ट हुए थे ना, कत्ल का मुलजिम, न घर न बार, ना उनके पास वीजा था मदियन का, वो इलीगल कह लीजिए आज की जुबान में उस शहर में मौजूद है। फिर आप देखिए घर नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, हक महर के पैसे नहीं है, और कोई इसको जानता भी नहीं है, क्या आप शुएब की जगह होती तो अपनी बेटी देती? ये जो माँ बाप ने लंबी लिस्टें रखी हुई है ना रिश्तों से पहले, इन्होंने भी बड़े मसले खड़े कर दिए। तवक्कुल पे घर चलते हैं, कश्तियां तवक्कुल पे चलती हैं। आप जितनी मर्जी श्योरिटीज ले लें अपनी बेटियों के लिए, लोग तो ये तक लिखाते हैं कहाँ रहेगी, कब आएगी, किधर जाएगी, कोई नहीं निपते। तो अल्लाह तवक्कुल रिश्ते आपकी अपनी माओं के, नानियों दादियों के तवक्कुल पे हुए थे तो चल गए ना। तो इसलिए इन सारी चीजों के ऊपर अपने आप को कभी ज्यादा बदर ना करें। फिर इसी तरह आप देखिए सबसे आखिरी जो मौका है वो कह के आखिरत तलब करने में तवक्कुल। क्या मांगू, जन्नत अदन मांगू, जन्नत नईम मांगू, जन्नत फिरदौस मांगू? अल्लाह कहते हैं सब मुझसे मांगो। आप क्या करें कि अल्लाह मैं अपनी औकात के मुताबिक नेकियां कर रही हूँ तो अपनी जनाब से अपनी शान के मुताबिक मुझे दे दे, मेरी नेकी इतनी बड़ी नहीं लेकिन तो अजर बड़ा कर दे, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो बहुत बड़ा। और सूरत शुरा आयत 36 की मिसाल मौजूद है, फमा उती तुम इन शईन फमताउन हयात दुनिया, जो फायदा तुम दिए गए वो अल्लाह की तरफ दुनिया का फायदा है, अल्लाह के पास इससे बेहतर भी और बाकी रहने वाला है ईमान वालों के लिए, और वो लोग वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मैं अक्सर सोचती हूँ कुछ लोग आखिरत मांगने में भी एग्जेजुरेशन कर देते हैं, पूरा मेन्यू कार्ड अल्लाह को देते हैं, जन्नत में इस तरह बीच का महल, मोटा गोजा चिपटा मोती अला मिलना। एक शख्स को अल्लाह के नबी ने दुआ मांगते देखा, वो कुछ ऐसे ही कह रहा था, अरे अल्लाह मुझे जन्नत में दाई तरफ मोती का वो बड़ा सा सफेद महल दे दे। तो आपने कहा शख्स तूने जन्नत मांगने में मुबालगा कर दिया। एक हमारी बहुत अच्छी साथी थी ह्यूस्टन में, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरब हैं मतलब नॉन उर्दू हैं, तो वो कहा करती थी कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह मुझे कहाँ ले जाए, बस एक बार मेरे पांव जन्नत में डाल दे। کچھ بھی دے دے نہ دے میں کھڑی ہو جاؤں گی بیٹھ جاؤں گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے یہ غم ہے کہ میں ایک دفعہ جنت میں پہنچ جاؤں. تو اللہ سے آخرت مانگتے ہوئے بھی ایسی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافی ہوگا.